ओम शांति। जो ये कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल कहो या विशेष जो टॉपिक है, अम्ब्रेला टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है? तो अपने अंदर बहुत सारे कैपेबिलिटीज है, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे शक्तियां हैं। शायद हमने कभी उसको यूज करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होंगी, या समय पर वो शक्ति बाहर आती नहीं होंगी। परंतु ये जो छिपे हुए, जिसको कहते हैं इननेट डोरमेंट जो क्वालिटीज है, उसको जागृत करना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इतना अपने अंदर ऐसे अवेयरनेस आए जो हम रोशनी की तरफ जाए, कि जितनी मना जैसे ये हॉल है, जो आप आते हैं तो ये पूरा अंधेरा है और कोई लाइट ऑन नहीं है, पूरा डार्क है। तो फर्स्ट टाइम आप अंदर आए तो कुछ दिखा नहीं, तो बाहर खड़े हो, हम आकर आपको पूछेंगे अंदर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है। है तो बहुत कुछ है, इतने सीट्स है कि स्टेज है कि क्या क्या है, पर आप कहेंगे कुछ नहीं। पर रोशनी आने से आप फिर देखेंगे कितने सारे चीजें हैं, तो आप वर्णन करेंगे ये है ये है ये है। ऐसे अपने अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे खजाने हैं और बहुत सारे गुण जैसे शक्तियां हैं, परंतु जब हमारे फोकस उस पर नहीं होता है तो अंधेरा है। लाइट की फोकस हो तो आपको हम दिखाई पड़ रहे, हमको आप दिखाई पड़ रहे, नहीं तो नहीं होगा ना। तो वो रोशनी जो होती है ना, वो आती है समझ से, समझ से, शक्ति से। तो अंदर की जो भावना से वो दिखाई पड़ती है। किसी के अंदर बहुत अच्छी भावना है तो उनको कईयों के अंदर अच्छे अच्छे गुण दिखाई पड़ते, किसी को नहीं। वो कहेंगे ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कोई कहेंगे इनमें क्या गुण है। तो जैसी भावना है ऐसी दृष्टि है। तो जितनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उतना हमारा गुणग्राही दृष्टि हो जाती है, मतलब गुणों को पिकअप करने की। समझो आपको कोई शादी पे जाना हो, वहां आजकल कहते हैं ना ये कलर ड्रेस पहन के आओ, ऐसा कहते हैं ना, थीम होती है। तो कहते हैं आपको ये येल्लो पहनना है, तो आपको येल्लो पसंद नहीं है परंतु पहनना ही पड़ता, तो आप जाएंगे कोई भी दुकान में जाएंगे येल्लो कुछ कपड़े लेने, तो आपको आपके पसंद का रेड दिखाई पड़ता है, वो बहुत सारे रेड आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको बहुत पसंद है, परंतु आप येल्लो ही देखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि वो अभी जरूरत है, येल्लो की जरूरत है। हम कहेंगे हमारे अनुसार ये व्यक्ति नहीं है, वो ठीक है ना। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी क्या जरूरत पड़ रही है, थोड़ी धीरज धरना होगा, थोड़ा सहन करना होगा, ये येल्लो पिकअप करना होगा, क्योंकि अभी वो थीम चल रही है। तो वो थीम के आधार से हम चले ना फिर। जैसे कहते हैं कोई ओल्ड फैशन ना हो, जो अभी का फैशन है उस पर चलो। कई सिचुएशंस में हम ओल्ड फैशन अपनाते हैं, ओल्ड वेज अपनाते हैं, तो कहते कोई कहते क्या कहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ओल्ड होगा तो क्या कहेंगे, आप अपडेट करो अपने आप को, अपडेट करो, ठीक है ना। भले आपकी दृष्टि उस तरफ जा रही है, परंतु आप, मुझे याद है हमारी दादी, जब हमारी दादी जी गुलजार होते थे, क्लास कराते थे, तो फैंस लगे रहते थे वो कोने से ये कोने तक, कभी कभी कोई बीच में फैन खराब हो जाता था तो सभी उस तरफ देखते थे, क्योंकि फैन आवाज करता है ना, उस तरफ देखते थे। तो दादी पूछती थी हम सब बहनों को, आप में से कौन इलेक्ट्रिशियन है? बोलेंगे हम कोई नहीं, तो देखने से क्या फायदा? तो इस तरह से हम देखेंगे हमारे, जैसे इन इंग्लिश वेर वेर एनर्जी वेर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जिस तरफ से हमारी बुद्धि जाएंगी वहां एनर्जी जाएंगे, जरूर आप एनर्जी देंगे। तो किस तरह से हम ये अपडेट करें अपने आप को कि हर परिस्थिति में कौन से गुण चाहिए। हर परिस्थिति में हंसते हुए रहेंगे तो नहीं काम में आएगा ना, कहेंगे हम बहुत बहुत जोक्स करते हैं, सबको हंसाते हैं, ये बहुत अच्छा गुण है, परंतु हर जगह पे जाके आप किसी को हंसाने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे सभी, ये क्या हुआ? कोई शरीर छोड़े होंगे, वहां जाके आप जोक्स करेंगे तो मानेंगे कोई नहीं। तो हर गुण अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। तो अपडेट करना ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, बिकॉज वी आर मूविंग समथिंग टुवर्ड समथिंग न्यू। जैसे मेरे पास शायद एक 5 साल पहले एक फोन आया था एक फर्टिलाइजर कंपनी से, वो भाई फोन किया, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं और हमारी बच्चे को आपके पास लेकर आ रहे हैं, वो 16 साल की है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर पढ़ रही है, आपको उनसे थोड़ा बातचीत करना है क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट में फेल हुई है। अभी चौंकाने वाली ये बात है कि ये 10th क्लास में स्कूल में 3rd हाईएस्ट थी, इतनी अच्छी पढ़ने वाली, 4-5 सब्जेक्ट में गई, अभी वो कुछ जवाब ही नहीं देती है, आप थोड़ा उनको समझाना। तो हमारी जो वाइफ है उनको लेकर आएंगे, तो वाइफ लेकर आई। अब वो वाइफ, उनकी जो वो बच्ची है उसके नाम है रम्या, और रम्या की माँ इतना सुनाने लगी, कहने लगी मेरा भाई के बेटे दोनों IIT में पढ़ते हैं, और देखो ये लड़की का हाल देखो, इसका पूरा टाइम मोबाइल पर रहती, अभी इसका तो फेल ही होएंगी, ये वो सुनाती गई, रोती गई। मुझे लगा इनको मेडिटेशन, इनको काउंसलिंग चाहिए, वो बच्चे को नहीं, क्योंकि बार बार उनकी बेटी की तरफ देखती और पूछती, बताओ तुमको मेडिटेशन सीखना है दीदी से, बताओ रम्या। और रम्या के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, ऐसे करते हैं बस, ऐसे मतलब करना है कि नहीं करना वो भी नहीं बताते हैं। 2 मिनट के बाद फिर पूछेंगी तुमको साइंस ही करना है कि मैथ्स करना है, क्या करना है दीदी को बताओ, और फिर वैसे नो एक्सप्रेशन अगेन। ऐसे 3 दिन चले, वो माता ही बात कर रही थी, वो लड़की बिल्कुल मेरे से बात ही नहीं कर रही थी। 4th डे उनके फादर ने फोन किया, उन्होंने कहा माई वाइफ कांट अकंपनी, वो नहीं आ सकते क्योंकि घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं, तो रम्या के साथ मैं आता हूँ उनको छोड़ने। मैंने कहा भले आप आना, क्यों नहीं, आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने आपको ब्रीफ किया होगा ना मेरे बेटे के। मैंने कहा बहुत ब्रीफिंग हो गई 3 दिन से, मैं सुन रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे भी चांस देना बहन, मुझे थोड़ा सुनाना है। मैंने कहा सुना दो जो है। भाई ने कहा 1920 अक्टूबर 10th में रम्या पैदा हुई। मैंने कहा अच्छा, वो समय से बहन जी मेरा भाग्य खुल गया, ये भाग्य लेकर आई मेरे लिए, ये डायमंड है, डायमंड, इसको बस थोड़ा पॉलिशिंग की जरूरत है, पॉलिशिंग कराने लेकर आए हम बस, और कुछ नहीं। इसकी जो बुद्धि जिस चीज पर जाएगी ना वो जरूर हासिल करेगी, इसमें वो ताकत है, वो कैपेबिलिटी सब है दीदी, ये डायमंड। इतना माना प्राइड से वो ऐसे सुना रहे थे, और मैं भी बड़ी इंटरेस्ट से मैं भी सुन रही थी, और मैं धीरे से रम्या की तरफ देखी, रम्या का चेहरा ही बदल गया, टोटली इंडिफरेंट जो थी ना, एकदम नॉन शलांटे से बैठी थी, एकदम चेहरा जैसा खिल गया, जैसे एकदम लाइफ आ गई चेहरे पे, और उनके फादर के हाथ ऐसे पकड़ ली और खींचने लगी, रोने लगी और कहने लगी पप्पा मैं करके दिखाएंगी, पप्पा मैं करके दिखाएंगी। वही बच्ची जो ऐसे ऐसे कर रही थी 3 दिन से, करना क्या है हमको? रोशनी माना डायमंड देखना, बस इसको सबको डायमंड की रीति से देखना है। है तो डायमंड कहां मिलते, मिलते कहां है? है ना, वहां को एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वह जगह पे इतनी वैल्यूबल चीज मिलती होंगी, पर पॉलिश करना पड़ता है उसके अंदर से जो वो शाइन लाने के लिए, है ना। तो वो समझ से हम हर एक को देखे, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। माना जैसे आप सोए हुए हैं, जैसे वो माता सोई हुई है, क्या सोच रही है, ये तो ऐसी है, बनेगी नहीं, इस तरह से रहेगी, इस वो सोचती जा रही है, अंदर डायमंड चमक रही है, वो दिखाई नहीं पड़ रही है, नहीं दिखाई पड़ रही है। तो वो ऐसे अंक हमारे बनाए, ऐसे हम अपने आप के अंक ऐसे बनाए जो हमको वो डायमंड दिखे। वो देखेंगे तो फिर इतने थॉट्स नहीं चलेंगे, इतना इतनी चिंता नहीं होएंगी, इतनी दुविधा में नहीं आएंगे, डायमंड ही देखते रहना है। तो कोई भी कुछ भी कहे, हमारी बच्ची तो करके दिखे, ऐसे नहीं कि अपने मियां मिट्ठू बनना है, मियां मिट्ठू माना जैसा बहुत खराब है फिर भी सोचे बहुत अच्छा है, इस तरफ से नहीं, परंतु उम्मीद रखना है। किसी ने कहा मुझसे, बहन आप क्या कह रहे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है? कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है, ऐसे कैसे हो सकता है? अपने बच्चों पर तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कोई भी माँ बाप। मैं कहती एक्सपेक्टेशन में क्या है ना, बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, वो बहुत उतावला होता है, जल्दी जल्दी होना है, परंतु उम्मीद होप जो होती है ना वो बहुत अच्छी चीज होती है। भले कितना भी टाइम ले, वो आप पेशेंस से ठहरेंगे, इंतजार भी करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे गुणग्राही दृष्टि, कितना भी अपने आपको आप देखेंगे बहुत गलत हो रहा है, पर उसके अंदर से लाइट दिखना, अपने अंदर रोशनी होगी तो ही दिखाई पड़ेगा ना, नहीं तो अंधेरे अंधेरा है। अब बोलेंगे इनके अंदर कौन से गुण है, एक हस्बैंड वाइफ आए थे, बहुत लड़ रहे थे, मैंने कहा सेपरेट टाइम पे आओ आप दोनों। तो उसको मैंने कहा देखो आप आपके हस्बैंड आपके वाइफ के बारे में आप कुछ अच्छी चीजें लिखो। तो बैठ के सोच रहे थे, मैंने कहा आप टाइम लो करके मैं दूसरे काम पे गई, फिर एक 15 मिनट के बाद आई, पेपर एकदम नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने ऐसा कैसा हो सकता है भाई साहब, कुछ तो होंगे ना, मैं मुझे मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब कोई गुण नहीं है। अच्छी थी वो, थी निकाल के है लिख दो ना, क्योंकि मुझे था कि वो अब उनकी वाइफ को दिखाना था, पर कुछ है नहीं तो क्या दिखाऊं। एक होता है अंधियारा, माना जो समझौता से चलना, कि चलो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं ना इंग्लिश में, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज, चलो खराब है जो भी है, ये है ही ऐसे तो क्या करे, तो चलाना ही पड़ेगा। इस तरह का चलाना ये रोशनी नहीं है, ये तो हो गई फिर अंधेरा अंदर से, बाहर से दिखा रहे कि अब सब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, जैसे आपको कहना भी नहीं होगा तो कह देंगे सॉरी, पर अंदर से नहीं है। तो एक होता है समझ से किसी के अंदर गुण देख के एक्सेप्ट करके, थोड़ा फर्गिव करके, थोड़ा लेट गो करके चलना, इसको कहते समझना। कौन सी चीज आसान है, कॉम्प्रोमाइज या अंडरस्टैंडिंग, कौन सी चीज आसान है? अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी मेहनत है, कॉम्प्रोमाइज बड़ा इजी है, किसी को चुप कराना है, हाँ ठीक है कोई बात, चलो ठीक, आप ही राइट, आप ही राइट। एक दिल्ली से एक लड़की आई शादी करके हैदराबाद में, वो मेरे पास आई, बात करती थी क्योंकि उनके जो हस्बैंड है मैं बचपन से उसको जानती हूँ, तो कंप्लेन करी, माना जैसा दिल में बात है, कहने लगी जब से मैं हैदराबाद आई हूँ दीदी 8 महीने हो गए, मेरे को कहां बाहर नहीं लेकर गए, मैं हैदराबाद देखी नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कहा भी वो पूरे हफ्ता बिजी है और वीकेंड को खूब सोते हैं, कहते मेरे को रेस्ट चाहिए रेस्ट, तो सोते रहते हैं। तो मैंने कहा, मैं जब उनके हस्बैंड को मिली, मैंने कहा दिलीप थोड़ा तो तुम उनको लेकर जाना, वो नया मॉल आया ना वहां तक तो लेकर जाओ, घर के नजदीक है, थोड़ा उसको घुमाओ, उसको अच्छा लगता है तो लेकर जाओ। हाँ 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 जरूर जरूर, ऐसे कहा। नेक्स्ट टाइम आई, वो सिमरन उसकी जो वाइफ है वो आई, वो कहने लगी दीदी आपने कहा क्या कि मुझे मॉल लेकर जाने के लिए? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं लेकर गए? लेकर गए दीदी, वही तो बात है, आप कभी नहीं कहो उनको कुछ भी। मैंने कहा क्यों, लेकर तो गए ना? लेकर गए, हर जगह पे लेकर गए, देख लिया, हो गया, खुश है, हाँ ठीक है, चले फिर दूसरा फ्लोर भी देखना है, चलो चलो देख ले, सब हो गया ना। इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। उसने कहा मुझे मॉल जाने की कोई शौक नहीं है, इनके साथ जाना था ना, कंपनी की बातें। तो ये कहते चलो चलो चलो, तो ये क्या हो गई? ये समझ से की हुई बात है नहीं ना, ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गई। एक हमारे जहां हमारा सेंटर है, सेंटर के नजदीक अर्ली 2000s में एक कॉलेज हुआ करते थे, वो इकफाई कॉलेज करके मैनेजमेंट का। तो उसमें से बहुत सारे वहां जो पढ़ते हैं बच्चे आते थे कॉलेज के। तो उसमें से एक नागपुर का लड़का आया था, का नाम विजय था। वो आके उन्होंने सुनाया, बेन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने कहा क्या तकलीफ है? कहने लगे हमारे जो रूममेट है, जो सेट कर देते हैं ना, यू कॉलेज वाले सेट कर देते इनके साथ तुमको रहना है, तो ये मेरे कॉलेज के जो रूममेट है मेरा, वो बहुत गंदा है, इतना डर्टी है, कपड़े धोता नहीं है, बकेट में पड़े रहता है और सोप पर पानी डाल के रख देता, उसमें से इतनी बदबू निकलती रहती है, वॉश नहीं करता है, क्लास में लेट आता है और मेरा शर्ट पहन के आता है, और मैं पूछती हूँ मेरा आयरन शर्ट पहन के क्यों आया, तो कहता है व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, दोस्त किसके लिए, थोड़ा बांटना सीखो, इस तरह से जवाब देता है। कुछ भी उसमें अच्छाई नहीं है, बहुत लेजी, केयरलेस है। मैं वो रूम भी शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एडवांस पे कर लिया, एडजस्ट कर लो, मेरे पापा कहते हैं मैं क्या करूं, मैं पढ़ नहीं सक रहा हूं क्योंकि रूम बहुत गंदा रहता है, क्लीन करते जा रहा हूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा तुमको साफ सुथरा कमरा चाहिए, तुम साफ कर दो ना, उसको गंदा चाहिए वो गंदा करता रहेगा, अब क्या करें। उन्होंने कहा ये सोल्यूशन आप दे रहे हो मुझे? मैंने कहा और क्या कहूं। तो उन्होंने कहा बेन जी ऐसा थोड़ी ना, दिस इज नॉट फेयर, बोला ये अन्याय है। मैंने कहा देखो आपको करना तो वही है, साफ तो आपको ही करना पड़ेगा, वो तो करने वाला नहीं है, परंतु आप समझौता करके करेंगे या समझ के करेंगे आपके ऊपर है, मना रोशनी में आके करेंगे अंधेरे में रहकर करेंगे आपके ऊपर है, तो अंधेरे में रहकर करेंगे तो फिर आप डिस्टर्ब होते रहेंगे, करना तो वही है, तो आप आपकी अवेकनिंग होगी, आप करेंगे समझ के तो बड़ी खुशी में रहेंगे। तो उन्होंने कहा फर्क क्या है? मैंने देखा ये लड़का केयरलेस है, लेजी है, एकदम डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर इसमें कुछ अच्छा ही है कि नहीं वो बताओ मुझे, थोड़ा रोशनी दो। तो सोच में पड़ गया, कहने लगा दीदी ये अच्छा कॉफी बनाता है। अच्छा तुमको कॉफी पसंद है? मेरे को बहुत पसंद। ठीक है और कुछ? कहने लगा फाइनेंस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा पुअर हूं, मैं इतना अच्छा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है इसमें, ये मुझे थोड़ा सिखाता है ये फाइनेंस सब्जेक्ट। मैंने कहा बहुत अच्छा। और कुछ? जब घर से पैसे टाइम पर नहीं आते ना, ये उधार में देता है पर मांगता नहीं है जब तक मैं ना दूं। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो वो कॉफी बनाता है और फाइनेंस में कोच करता है और पैसे देता है वापस मांगता नहीं है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है ना। चलो तुम सफाई करो। जब आप सफाई करते हो ये नहीं सोचो एक गंदा लड़का है, गंदा लड़का है। नहीं, आप सफाई करते ये सोचो अच्छा कॉफी बनाता है और फाइनेंस सब्जेक्ट में कोच करता है और पैसे देता और मांगता नहीं है, ऐसे सोचते सोचते आप सफाई कर लो। इसको कहते हैं रोशनी, समझना। ये कर सकते हो, देख लो हो सकता है। तूने कहा दीदी इससे सोल्यूशन आएगा? मैंने कहा करके तो देखो, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिकल होगा ना। तो गए फिर, कभी कभी आते थे, परंतु वो जो प्रॉब्लम है वो डिस्कशन बंद हो गई, तो मैं भी कुछ नहीं पूछी। तो एक दिन फोन किया, कहने लगा दीदी मुझे आना है, आपसे ब्लेसिंग लेना है। मैंने कहा क्या बात है, आज तुम्हारा बर्थडे? हाँ मेरे बर्थडे। मैंने कहा अभी आ जाओ, उनका तो जो कॉलेज बहुत नजदीक, अभी आ जाओ। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, शाम को आऊंगा, मेरे को कमरे में जाना है, थोड़ा फ्रेश होकर आऊंगा। तो अपने रूम में गया, फिर मेरे को फोन किया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा, दीदी ये एक बड़ा सरप्राइज हो गया। क्या सरप्राइज हो? मेरा पूरे कमरे में बहुत नीट हो गया है, नए बेडशीट डाले हुए हैं और कितना नीट, और एक कार्ड रखा हुआ है टेबल के ऊपर और उसमें सिग्नेचर है मेरे रूममेट का और उसमें लिखा है ये मेरे बर्थडे गिफ्ट तेरे लिए, एंजॉय कर। जितना हम समझते हैं उतना दूसरों को हम रोशनी में ले आते हैं। जितना अंधेरे में यही नेगेटिव एनर्जी चलती रहेंगी उतना दूसरों को भी उसमें खींचते रहेंगे। एक भाई था, वो अडिडास शोरूम उनका माना उनका दुकान एक फ्रेंचाइजी उन्होंने लिया है, एकदम हमारे सेंटर जैसा हिल्स है ना उसके ऊपर है, नीचे उनका दुकान है। एक बार अपने पास आया, कहने लगा दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों होता दीदी? मैंने कहा क्या हुआ? इतने सारे दुकानें ये एंड से वो एंड तक, हमारे दुकान में चोर आया, ये क्यों ऐसा हुआ? मैंने कहा पता नहीं, पर आप कौन शटर बंद करते? कहने लगे मैं ही, डिनर करके फिर मैं ही आता हूँ, मैं सब सेट करके मैं ही बंद करके जाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आप शट करते हैं तो किसे किसे थॉट्स आते होंगे आपको? कुछ भी नहीं आता, क्या सोचते? कहने लगे दीदी मैं जरूर ये सोचता, चोर तो नहीं आएगा, ये मेरे अंदर में ये थॉट तो आता है। मैंने कहा चोर तो अपने रास्ते पे जा रहा था, आपने बुलाया, चोर चोर जी आओ आओ आओ। जितना आप ऐसे फेंकते रहेंगे ये वाइब्रेशन, उनको भी खींच होंगी, आएंगे ना। कोई कोई मिलते कहते मुझे पता है ऐसा होने वाला, मुझे पता है मैं फेल होने वाला हूं, मुझे पता है ये सेट नहीं होगा। तो जो आप निर्णय ले लिए तो वही होगा ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग माना अपने फ्यूचर अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में लेना। कहना अच्छा ही होने वाला है, ठीक ही होने वाला है, मेरे हाथ में है, क्यों नहीं होगा? एक दूसरों को भी वही कहेंगे अच्छा ही होने वाला है। तो रोशनी में खुद को लाने से दूसरों को भी रोशनी में लाते हैं। बहुत एनर्जी जाता है जब हम अंधेरे में है तो, रॉन्ग समझ से चलते रहते हैं। एक युगल आए थे मेरे पास बहुत साल पहले, और वो हस्बैंड बात करते जा रहे, वो वाइफ को बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो कहने लगे बहन जी मैं इतना कमाता हूँ, इतना करता हूँ घर के, और कुछ भी करता हूँ, घर आते इनका चेहरा ऐसा उतरा हुआ हर टाइम। मैं क्या, ये लाइफ क्या है ऐसे सुनाने के? तो मैंने कहा क्या होता है? मतलब वो मेरी मदर और ये 20 साल से लड़ रहे हैं, और हर टाइम मैं घर आता हूं तो ये दोनों लड़े हुए और रूठे हुए अलग अलग कमरे में रोते हुए ऐसे मैं पाता हूं। तो किसलिए मैं कमाऊं, किसलिए मेरा जिंदगी ऐसे ऐसे करके बहुत बहुत सहन कर रहा हूं दीदी, मैं बहुत सहन कर रहा हूं। तो वो मैंने सोचा उनकी वाइफ भी कुछ सुनाएंगी, उनकी तरफ से भी मुझको सुनना है। तो उनकी तरफ मैं देखी, वो कुछ भी नहीं बोली, वो चेहरा ऐसा उतरा हुआ ऐसे बैठी है, बस कुछ बोलना ही नहीं है। उनको फोन आया, भाई साहब को बोला मैं फोन पे बात करके आऊंगा करके बाहर गए। जाते ही उनकी वाइफ वहां से खड़े होकर भाग के मेरे पास आकर बैठी, वो आने से पहले बात कर लेंगे दीदी। उन्होंने कहा क्या बात करने है? कहने लगे कि हाँ मैं और मदर इन लॉ 20 साल से लड़ रहे, ये सच है। मैंने कहा ठीक है, परंतु क्या है प्रॉब्लम? मेरी मदर इन लॉ नहीं है, मैं नहीं हूं, ये है प्रॉब्लम। आप दोनों लड़ रहे और ये कैसे प्रॉब्लम हो गए? तो कहने लगे कि देखिए कुछ तो कुछ होता है ना, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में होता है ना, कुछ तो होता है। उनकी ड्यूटी क्या है, घर में आते ही हम सुनाएंगे, चलो मेरे दिल में ऐसा हुआ, तुम्हारी माँ ने ऐसे किया, तो उनका उनको क्या कहना चाहिए? चलो छोड़ दे सुशीला, मेरी माँ बूढ़ी हो गई, अभी कहाँ चेंज होगी, मैं हूं ना, तेरे को जो चाहिए जो है मैं हूं ना, इस तरह से बोलना है। फिर माँ जी के पास भी कोई नहीं है तो माँ जी के पास भी जाना, मम्मी क्या हुआ, तुम्हारी बीवी ऐसी वैसी, तो आप उनको आप कह सकते हो मेरी बीवी जिद्दी है, वो चेंज होने वाली नहीं है, मम्मी मैं हूं ना तुम्हारे लिए, जो तुमको चाहिए मेरे से मांगो करो, इस तरह से बोलना चाहिए। वो कुछ नहीं करते ये सब, वह खड़े रह के कहते बी हैप्पी बी खुश, खुश रहो। कैसे रह सकते खुश रहो? इतना आसान है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है कोई खुशी देने के लिए कि नहीं, ऐसे खुशी आ जाएंगे किसी को? नहीं आएंगे ना, देना पड़ता है। सहन क्यों करना है, वहां सहन करने की जगह ही नहीं है, टाइम एनर्जी जा रहा है उसमें। वहां करना क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट करना है। एक और माता थी, उनके हस्बैंड ने कहा यह थोड़ा अलग सी है, इसको थोड़ा मुस्कुराना सिखाओ ये वो। मैंने कहा ये क्यों नहीं मुस्कुराती, पता नहीं क्यों नहीं मुस्कुराती। तो मैंने पूछा उनको क्या प्रॉब्लम है, कहती रात में मैं उठती हूँ ना 2 बजे ऐसे उठ जाती हूँ, मुझे लगता है कि 3rd फ्लोर पे रहती, वहां से मेरे को कूदना है, मर जाना है, ऐसा मेरे थॉट्स आते। मैं तो मैंने कहा बहन जी आप मेडिटेशन करो या तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ तो आपको तो कुछ तो रिलीफ मिले, इस तरह से थॉट्स अच्छे नहीं है। तो मैंने उनको हस्बैंड को समझाया, मैंने कहा वो उनको थॉट्स आ रहे थे वहां से कूदने की दिल हो रही उनको। तो भाई कहता है मैं ताला लगा दूंगा, क्या करेंगे आप, ताला लगा देंगे, वो कूदने का तो है ही नहीं, ताला लगा। मैंने कहा भाई साहब ये कोई सोल्यूशन है, उनको क्यों इतना खराब लग रहा है आप सोच के, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करो, कुछ अच्छी बातें सुनाओ, ऐसा टाइम स्पेंड करो। कहने लगे बहन जी क्या अप्रिशिएट करो। मैंने कहा कि वो कुछ बनाते तो कहो बहुत अच्छा बनाए तूने, बहुत अच्छा बना, ऐसा कुछ बोल। दीदी मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैंने कहा झूठ की बात नहीं, कोई कभी तो अच्छा बनाती होंगे, कुछ तो बोलो। वो भाई को समझ में नहीं आया। 6-8 महीने के बाद फिर वो राखी जो उनकी वाइफ है वो आई मेरे को मिलने, कहने लगी दीदी मेरे को और दूसरे थॉट्स आ रहे, मेरे को जो कूदने की जो बात है वो नहीं है, अभी वो नहीं आ रहे, दूसरे थॉट्स आ रहे। कौन से थॉट्स है, 2 बजे मैं उठ के बैठती हूँ, इनके तरफ देखती हूँ और मेरे को लगता पत्थर लेके मारू। मैंने कहा ये तो बहुत खराब है, और वो भाई को मैं सुना भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा वो भाई को फोन करके मैंने कहा देखो प्लीज अप्रिशिएट हर, यू हैव टू, कुछ भी करो क्या भी करो आप कुछ अच्छा सोचो, क्या है इनके अंदर गुण आप सोचो, नहीं नहीं ऐसे ऐसे सोचने से क्या वो मुस्कुराएंगे, मैंने कहा सब होगा आप सोचो। तो एक दिन फोन किया, मैं ऑफिस जाते जाते आपके पास आऊंगा, आए। क्या हुआ दीदी, मेरे को समझ में आ गया, मैंने अप्रिशिएट किया। मैं क्या किया दीदी, मैंने उनको बताया कि जब शादी होके फर्स्ट ईयर में मैंने सुनाया कि मुझे काकड़ी जो होती है ना क्यूकम्बर, वो ऐसे ऐसे कट करते ना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लंबा लंबा काट के नमक और वो नींबू डालेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उसने वो दिन से 20 साल से ऐसे कट कर रही है, कभी ऐसे कट नहीं करी। तो मैं उसके पास चला गया सुबह को और मैंने कह दिया तुम्हारे अंदर ये अच्छे गुण है, जो तुमको मैंने कहा वो तुम 20 साल से करती आ रही हो, ऐसे काकड़ी कट करती हो, थैंक यू। मैंने ऐसे कह दिया, बस वही याद आया तो मैं कह दिया। तो शाम को फिर फोन किए, बोले दीदी इसका चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, थोड़ी आई है। ऐसे आप कुछ अच्छा बोलते रहो, एक जगह पे हम गए, ये है रोशनी, इसको ही तो रोशनी कहेंगे ना, ऐसे नहीं हिमालय के ऊपर बैठो घंटे घंटे बैठे, क्या रोशनी आएंगी, आप परिवार के बारे में सोचते रहेंगे वहां बैठ के। रोशनी है जो समझ से आती है। तो एक होता है समझ, माना किस प्रकार से मुझे कहना होगा, जिस प्रकार से मुझे उनके साथ व्यवहार में आना होगा, परिस्थिति में कैसे उसको एक्सेप्ट करना होगा, ये अपने आप को समझाना, माने अपने आप को रोशनी में ले आना, राइट समय पे ऐसे थॉट आना, हो गया खत्म, नहीं सब अच्छा होने, सब अच्छा, इस तरफ की रोशनी चाहिए। एक दो माताएं आई थी, वो कहने लगी कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमारे 5 बहनों का एक ही भाई है, उसकी बीवी है ना उसका दिमाग खराब कर दी, ब्रेन वॉश कर दी, माना सब बहने ऐसे सोचते, वो बीवी उनका दिमाग खराब कर दे ऐसा सोचते। क्या क्या बात हुई, तो जो मेरे मदर के जो कमरा है, अभी मदर रह अभी नहीं है, तो उनके घर पे गए तो कहने लगी कि यहाँ जो कबड़ में मम्मी के कपड़े हैं, साड़ियां हैं, जो भी है उसमें से आपने जो सौगात में दिए होंगे वही लो, बाकी छोड़ दो। तो ये पांच अब बहने क्या करते, एक दूसरे को फोन करते, खूब एक दूसरे को सुनाते। ऐसे कैसा हो गया कि हमारे माँ और हमारे माँ की कमरा और हमारे मदर की साड़ियां, और ये कह रही है एक दो लो बाकी छोड़ो, ये कौन होती है, ये कौन होती है हमारी माँ और बेटियों के बीच में आने वाली। ऐसे करके एक दूसरों से बात करके करके रो रो के हो गया काम। फिर भाई ने फोन किया, दीदी आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, जो प्रोग्राम के लिए उनके घर पे गए थे ना, सौगात भी सबको दिए, आपको अच्छा लगा, बहुत मेहनत करी मनीषा, बहुत मेहनत करी। क्या मेहनत करी भाई, उसने हम सबको इंसल्ट किया, हमारी माँ के कमरे में हमको ही इंसल्ट किया, ये इसी इसे सुनाए। तो वो भाई ने कहा आपको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, करके फोन रख दिए। आप तीन महीने से फोन नहीं उठा रहे, पांचों बहनों को फोन नहीं उठा रहे, मतलब ही हैड इनफ, इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ होगा। तो ये दोनों बहनें ऐसे रो रहे ऐसे रो रहे, वो लड़की इनके दिमाग खराब करती ऐसे करके। मैं अभी भी कुछ कहने के लिए भी मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ सुनेंगे। धीरे से मैंने कहा जब से मैं ब्रह्मा कुमारी में आई हूं, जब से मैं झूठ बोलना सीखी हूं। बोले क्या बहन जी अब झूठ बोलते? मैंने कहा खूब झूठ बोलती हूं। क्यों बोलते? मैंने कहा देखो कोई हस्बैंड वाइफ आते खूब लड़ रहे, मैं सदा कहती हूं आप अलग टाइम पे आओ, एक ही टाइम आएंगे तो बहुत चिल्लाते, मेरे को नहीं होता है, मेरे को सुन नहीं सकती हूं, आप अलग अलग टाइम में आओ। तो फिर शाम को वो हस्बैंड आएगा ना, तो उनको मैं कहूंगी कि आपकी वाइफ सुबह को आई थी, आपकी बहुत प्रशंसा कर रही थी, कुछ नहीं की होंगी पर मैं सुना देती हूं, बहुत प्रशंसा कर रही थी, आप बहुत अच्छे हो ये वो। तुरंत वो कहते दीदी एक्चुअली हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ भी, छोटी छोटी बात है हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है ना। हाँ हाँ। फिर वाइफ एक हफ्ते के बाद फोन करेगी, दीदी ये हमारा हस्बैंड तो बहुत चेंज हो गया आपके साथ बैठ के। कुछ नहीं, हमारे साथ बैठने की बात नहीं, उन्होंने जो नहीं कहा उसको मैं बना के सुना दी, उसमें क्या है। तो बहनों ने कहा आप क्यों सुना रहे हमको ये बात? मैंने कहा देखो जब आप भाई ने आपको फोन किया तो आपको क्या कहना होगा, बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सारे अच्छे सौगात थे, ये सब पहले सुनाना, गुलाबबाशी पहले गुलाबबाशी देना, फिर उसके बाद क्या, अरे छोटी है उसको समझ नहीं तो सिखा दे, इस तरह से हमसे बोली है तो अच्छी बात नहीं, तुम अपनी रीति से तुम सुना दे, छोटी है ना समझ जाएंगे, आप समझाओ, बस उतना ही है ना, काम हो गया ना। जो चीज सिंपल रीति से आप ठीक कर सकते हो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब तक हम अपने साइलेंस में नहीं रहेंगे आप अपने गुण बाहर आएंगे नहीं, वो गुण बाहर नहीं आएंगे तो दूसरों में डायमंड या दूसरों का गुण देखना तो बड़ा इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल है। कहेंगे तो भी कहेंगे नहीं नहीं हमको अंधेरा में रहना है, उनके अवगुण को ही देखते रहना है और अवगुण को देखते देखते रोते रहना है, बस यही हमारा धंधा है। रोशनी में आने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने आप से बातें करने का, मीठी मीठी बातें करने की आदत डालनी होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सबको है कि हमको रोशनी में रहना है, रोशनी में रहना है, तो भगवान तो रोज कहता रोशनी में आओ रोशनी में आओ, इस तरह से सोच नहीं करो रोशनी में, कहेंगे नहीं नहीं हमको ऐसे चिंता करना बड़ा अच्छा लगता है, यही बैठे रहेंगे तो भगवान भी क्या करे ना, हिम्मत करेंगे तो फिर रोशनी में आएंगे। परंतु इसके लिए बड़ा आसान, जैसे हम सोचते हैं आज सोच लिए कल रोशनी में आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना, टाइम तो लगता है इसके लिए, टाइम बराबर लगता है। तो ये टाइम लगता है माना जैसे आप धीरे धीरे कदम कदम एक एक कदम लेके एक एक सेकेंड लेके चलना होता है, परंतु किस प्रकार की हमारी थॉट्स चल रहे हैं ये सोच के। एक भाई था उन्होंने कहा, यंग है 27 है, उनकी वाइफ 26 है, दोनों इतना मना, वो लड़की ऐसी है तो दो तीन महीना बात करना बंद कर देती है, घर में कुक को प्रोग्राम देती है खाना बनाने का कॉफी बनाने का, और हस्बैंड का कुछ भी प्रोग्राम नहीं देती है, घर में चार जन है, चार जन की कॉफी, तीन जन की कॉफी बनती और ये लड़के के लिए कोई कॉफी नहीं अपने खुद के घर में, क्योंकि ये लड़की प्रोग्राम नहीं देती। अब माँ को सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि ये लड़की करती नहीं, क्योंकि बात करना बंद कर दी दो महीने से। तो के लिए क्या करना है? तो इसको लगता है वो देखे तो मुझे भागने की दिल होती दीदी। वो लड़का कहता है मुझे रहना नहीं, उसका चेहरा ही नहीं देखना है। पर मेरी फैमिली फोर जनरेशन से कोई डिवोर्स ही नहीं है, मैं फर्स्ट होऊंगा डिवोर्स करने वाला। मैं कहां तक आ जाके मैं रहूं, रिसोर्ट में जाऊं, दोस्त के घर में कहां जाके रहूं, और इसको घर से भिजा दूं, बाहर भिजा दूं तो डिवोर्स गारंटी है। अब फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो साइलेंस की प्रैक्टिस करो, टाइम पे टाइम आप आओ यहां मेडिटेशन रूम में बैठो, सीखो, समझो। तो इसने बहुत सीरियसली ले लिया। फैक्ट्री जाते जाते दो मिनट बैठते थे, बस दो मिनट बैठ के जाते थे। एक दिन राखी के दिन में फोन किया, लास्ट ईयर आओ राखी बांधने, तो कहने लगा दीदी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने तुम्हारा घर तो यही है, क्यों टाइम लगेगा? नहीं नहीं मैं थोड़ा दूर हूं। आया और कहने लगा दीदी मैं बहुत परेशान था, मैं मेडिटेशन में बैठा और मैं खूब भगवान से बात किया। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मुझे डिवोर्स नहीं देना है, एडजस्ट होना है, ताकत नहीं, क्या करूं, मुझे थोड़ा लाइट में लेकर आओ। तो मुझे एक सोल्यूशन आया और मैं जाके मैंने मेरे वाइफ को मैंने कहा तुमको ये घर से नहीं निकालना है, ये तुम्हारा घर भी है, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूं क्योंकि तुमको देखे तो मुझे चिढ़ चढ़ रही है, तो मैं क्या करूं? तो मैं सोल्यूशन सोच लिया। गॉड टोल्ड मी तुम यही घर में रहो, मेरे माँ बाप के साथ तुम रहो, मैं तुम्हारे माँ बाप के घर में जाकर रहूंगा। रियली किया लड़का ने, ही डिड। वो माँ बाप को दो लड़कियां दोनों की शादी हो गई, वो तो आओ दामाद जी आओ आओ करके उनको इतना मर्यादा है सब करके उनको रखे, और वो फादर ने पांच दिन देखे हो वो एक कंप्लेन ने कुछ नहीं। दामाद फोन किए बेटी को कहने लगे कि ये मेरा बेटा है, दामाद नहीं मेरा बेटा है, तुम अच्छी तरह इसको संभाल, ऐसा नहीं करो करके उनको अच्छी तरह, तुम वहां से निकलेंगे मेरे घर पे मैं नहीं रखूंगा तुमको, इस तरह से धमकी फादर ने दे दिया। तो एकदम स्ट्रेट हो गई वो, अभी एकदम सीधी हो गई। माना रोशनी में आने के लिए भी इतना ईगो छोड़ना पड़ता है ना, जाके वहां वो लड़की के माना वाइफ के घर में जाके रहना, ही वॉज रेडी। तो इसीलिए मैं एंड करती हूं, ये धीरे धीरे होने वाली बात है, तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा। एक स्टोरी है, रियल नहीं है, स्टोरी है। एक लेडी के हस्बैंड बहुत मारपीट करता था, गुस्से वाला था, तो वो एक मैजिशियन के पास गई। कहने लगी मैजिशियन तुम मेरे लिए एक औषध बनाओ, जो औषध मेरे हस्बैंड पीते ही उनके अंदर प्यार आ जाए। अरे ये सब कैसा होगा? होगा तो आप बना के देना। तो उन्होंने कहा कि एक शेर होते ना, शेर की मूछ लेकर आओ। वे कहां से लेकर आऊं पता नहीं, तुम लेकर आओ तो मैं बना के दूं औषध। तो उनके घर के बाहर कुछ दूरी में एक जंगल है, और जंगल के अंदर शेर आके पानी पीती ऐसा उन्होंने सुना। तो रोज जाके वहां खड़े होके देखी तो रियली आया, वो शेर आके पानी पी रहा था। बहुत डिस्टेंस में खड़ी थी ना, तो रोज दो दो कदम आगे लेते लेते छह महीने में बहुत नजदीक में आ गई। वो शेर को भी जैसे आदत हो गई कोई मनुष्य आ रहा है जा रहा है। धीरे करके वो शेर के पास छह महीने के पास गई और मुझ खींच ली। वो शेर ने कुछ नहीं कहा, भले ले जाओ दो प्रॉब्लम। तो लेकर आई और ये मैजिशियन को दी, चलो अभी बना दो औषध। तो उन्होंने कहा ये तो शेर का ही है, जरूर शेर का है। एग्जामिन किया और हवा में छोड़ दिया। ये खूब रोने लगी, मैं इतना मेहनत करके मैं बनाई और आपने ऐसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैडम एक शेर को आप ठीक कर सकते छह महीने में, आपका हस्बैंड क्या है? करना क्या है? दो दो कदम लेते रहना, दो दो कदम लेते रहना। अच्छा, ओम शांति।